نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة انبیاء 17ویں پارے کی پہلی سورت ہے اس سورت کا نام جو کہ انبیاء کرام کے نام پر ہے تو اس سورت میں انبیاء کرام کی مختصر سی باتیں ہیں لیکن خوبصورت بات اس کی کیا ہے کہ قرآن پاک میں میکسیمم دعائیں جو انبیاء کرام نے مانگی وہ اسے ایک صورت میں ہم پڑھیں گے اور وہ دعائیں تو اصل میں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھاتی ہیں مکی دور کی صورت ہیں اور یاد رکھیے کہ مکی دور کی جو صورتیں ہوتی ہیں ان کی آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن آیتوں کا نمبر بڑا ہوتا ہے جیسے شروع میں دریا پتلا ہوتا ہے پھر بیچ میں جا کے چوڑا ہونے لگتا ہے مدنی صورتیں جو ہیں ان کے اندر ڈیپتھ بہت ہوتی ہے لیکن مکی صورتوں میں ڈیپتھ تو نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر کنارہ ایک ہوتا ہے حق اور باطل کا تو مکی دور کے آغاز کی صورتوں میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بات توحید پہ ہوتی ہے اس پوری صورت میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کرام نے کس طرح سے یہ ساری چیزیں کی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے بعض کہتے ہیں مکی ہے بعض کہتے ہیں برزخی ہے یعنی اللہ کے نبی کے ہجرت کے رستے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ اس میں سجدہ بھی ہے اور یا ایھا الذین آمنو کا لفظ بھی اس صورت میں بہت زیادہ آتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ صورت کا آغاز آپ کو بتاتا ہے کہ اس صورت کا پیغام قیامت ہے چھلکیاں ہیں اس میں کس چیز کی کہ لوگوں جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ بہت جلد ختم ہوگی اور پھر تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے اور تم اپنے رب کو فیض کرو گے آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں کیا غفلت کی وجہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدثن الا استمعوه وهم یلعبون ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی اپنے رب کی طرف سے آتی ہے وہ اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں لاہیتن قلوبہم اور ان کے دل تو کچھ اور ہی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں دلوں میں فکریں تو کچھ اور ہی ہیں کیا پیغام ہے اس صورت کے آغاز کا غفلت کے پردوں کو چاک کرنے والی چیز حساب کا فکر حقیقت یہ ہے کہ جو زندگی ہم میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ ایک چلتی ہوئی گھڑی کی طرح آپ اس وقت سے کوئی فائدہ اٹھا لیں یا نہ اٹھائیں گھڑی چلتی رہے گی آپ اپنے گھر کی رکھی ہوئی کسی گھڑی کو دیکھیے جس میں ٹک ٹک کی آواز بھی اگر آتی ہو تو آپ اس بات کو سمجھیں گے آپ اس کو دیکھتے ہی رہے ہائے ایک منٹ اور گزر گیا ہائے ایک منٹ اور موت کے قریب ہو گئی کیا فائدہ ہوگا گھڑی چل رہی ہے آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں اس کو چلنے سے روکتی ہوں کیا کروں میں اس کے سیل نکال دوں تو نکال دیجیے ٹائم تو نہیں رکے گا نا اسی طرح میری اور آپ کی زندگی چل رہی ہے گیٹ مور فرام لائف مجھے اس آیت سے ہمیشہ موٹیویشن ملتی ہے اور الحمدللہ اس پہ بہت سارے درس ہیں حساب سے پہلے اختصاب بھی اسی میں آتا ہے بیسیوں کے شاید اس سے بھی زیادہ بار اسی ایک آیت پہ درس دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے ہم نے یہ آیت سنی اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اگر ابھی ریڈیو پہ خبر آئے فلڈنگ ہو رہی ہے اور سیلاب کا رخ بالکل روسویل کی طرف ہے اور پانی سارا ابھی سڑکوں پہ بھر جائے گا اور گھروں میں گھس جائے گا ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے ہم ایسے نہیں بیٹھیں گے ہم اپنی جگہ سے اچھلیں گے کودیں گے اور ہمیں فکر ہم بھاگیں گے گاڑیوں کو نکال لیں گاڑی میں کچھ نہ ہو یہ نہ ہو یقین ہے نا تو کیا ایک ریڈیو پہ آئی ہوئی خبر یا فون پہ آئے ہوئے ایک الرٹ کا ہمیں اللہ کے اس الرٹ سے زیادہ خوف ہے آپ دیکھیں کہ خوف اتنا بڑا موٹیو ہے کہ انسان کو وہ بات کرنے پہ مائل کر دیتا ہے جس کے بارے میں ایک انسان سوچتا بھی نہیں بس اگر مثال آپ سب روم میں آ جائیں اور میں آپ کو کہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کرسیوں پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ میں سے آدھے لوگ تو کھڑے ہو جائیں گے اور آدھے سوچ میں پڑیں گے کیسے کھڑی ہوں گر نہ جاؤں میں کیوں کیسی لگوں گی لوگ مجھے دیکھیں گے ریلکٹنٹ ہوں گے آپ لیکن اتنے میں بالفرض ایک چھوٹا سا چوہا آپ کو فلور پہ دوڑتا ہوا دکھے بغیر دیکھے سنے آپ کرسی پہ کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ کو یہ یاد بھی نہیں رہے گا کہ آپ کیسی لگ رہی ہیں پھر آپ کو یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ کرسی ٹوٹ نہ جائے کیونکہ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز دکھ گئی جس سے فی الحال آپ نے بچنا ہے بعد کی بات بعد میں تو کیا آخرت کا خوف اور آخرت کی پکڑ اور حساب کی بات اتنی بھی اہم نہیں ہے اگر ہمارا اس آیت پر ایمان آ جائے نا تو ہم اپنے کام کرنے کی سپیڈ کو درست کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ میں بھی اکثر میں یہی آیت چوز کرتی ہوں اور اس پہ بہت سارے فگرز بتاتے ہیں مثلا ایک منٹ میں انسان کیا کچھ کر سکتا ہے 200 گز जमीन कवर कर सकता अगर एक इंसान चलना शुरू करे। आपको भी यहाँ से चलने को मौका दिया जाए तो आप 200 यार्ड्स तक कम से कम चल सकते हैं 1 मिनट में। इसी तरह अगर किसी से कहा जाए कि बोलो तो 250 अल्फाज 1 मिनट में इंसान बोल लेता है। और 1 मिनट में खून सारे जिस्म का एक चक्कर लगा के वापस हमारे दिल में आ जाता है। और 1 मिनट में जमीन अपने महवर के गिर्द कितना लंबा चक्कर काटती है। तो इससे सोचिए कि ये जब कोई आपको बुलाए और आप कहते हो कि 1 मिनट आती हूँ जरा सब्र करूँ, वो 1 मिनट कितना कीमती होता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सबको वक्त की फिक्र लगा दें। फिर आप देखिए कि इस जिंदगी में हिसाब के मुख्तलिफ मरहले होते हैं। एक चीज आपने भी देखी होगी कि हिसाब का मजमून हमेशा मुश्किल लगता है लोगों को। क्यामत के दिन का हिसाब अगर सामने रखे तो वाकई उसमें बहुत है। कल कोई कहते हैं कि क्यामत आ रही है, कोई आ जाए और कहे तुम्हें पता है कल क्यामत आ रही है, तो क्या हमारा आज का जो आखिरी दिन हमारी जिंदगी का गुजरेगा क्या हमारे पिछले सारे गुजरे हुए दिनों जैसा होगा? हम तो तड़प तड़प के हो जाएंगे, किस तरह से हम भागेंगे। और याद रखिए कि क्यामत का करीब आना इस बात का यकीन दुनिया पर सब्र करना आसान कर देता है। क्या लेना इसको। इसी आयत पे वो वाक्य मैं अक्सर सुनाती हूँ कि एक सहाबी के पास माले गनीमत में जमीन के दो टुकड़े आए। तो कहा अच्छा मेरे पास दो आ गए हैं, वो दूसरा दोस्त है उसके पास कोई नहीं है, कहा एक टुकड़ा तुम ले लो। दिल कितना बड़ा, हम कहते दो है नहीं एक और हो जाए तो तीन ही पूरे कर दो। फिर बड़ा सा या बैकयार्ड बनाओ, बड़ा सा लॉन बनाओ और बीच में एक बड़ा सा घर बनाओ। कहा नहीं एक मेरे पास है एक तुम रख लो। जब उनको दिया तो उनका जवाब इससे भी हैरतनाक था। कहने लगे मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। अभी क्यों जरूरत नहीं रही? कहा इसलिए कि आज की रात हमारे नबी के ऊपर एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसने इस दुनिया में हमारी रही सही ख्वाहिश और इस दुनिया में हमारी अट्रैक्शन कशिश खत्म कर दी। कहा वो कौन सी आयत है? कहा इक्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलति मुरिदून। क्या वो क्या करते हैं? मैंने एक दिन के लिए टुकड़ा लेने देखी ना अपने घर बाय करना हो और आपको पता कि कल आप यहां से वापस जा रही हैं किसी जगह फॉर गुड, तो आप खरीदेंगे? आप कहीं कौन लिखत पढ़त में पड़े, कौन ये लाइबिलिटीज अपने ऊपर ले? आप नहीं लेंगे। तो जिसको इस दुनिया की नापायदारी का यकीन होगा वो कभी भी दूसरी तरफ नहीं आएगा। और आप देखिए कि इंसान हमेशा गिनता है, बचपन में ग्रेड्स गिने जाते हैं, हफ्ता कब आएगा, छुट्टी कब, कहते हैं फ्राइडे इतनी देर से क्यों आता है, संडे इतनी देर से क्यों आता है। फिर जरा से जवानी की नजरें शुरू होती हैं तो स्कोर होता है उसका कितना उसका कितना। जरा से और बड़े होते हैं तो अपनी उम्र फिक्र लग जाती है अब शादी कब होगी, और बड़े हुए तो जॉब कैसे, पैसे कितने कितने बराबर होंगे, फिर दुनिया, फिर जरा और बड़े हो तो दुनिया की आबादी क्या, और जरा से और बड़े हो तो सियासतदानों की गलतियां कितनी है, और उस पर बैठ के घंटों तबसरे करेंगे। और बुढ़ापे में तो इंसान गिनता रहता है अच्छा मैं पीछे क्या छोड़ के जाऊंगा। तो ये लाहियाती कुलूब की कैफियत को खत्म करना। दो आयतें बेसिकली कि जिसमें वजह भी समझ आ गई और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो हमारा गोल आखिरत को बना ले। जब हम किसी काम को करना चाहें तो यही सोचें कि वाकई हकीकत है। और आप देखिए कि अव्वल सुनते कितने हैं लोग इस किताब को, लेकिन जो सुनते हैं अल्लाह उनकी बात कर रहे हैं कि लस्ता माऊ वहुम ये लबुन। तमाशों में कुरान पढ़ते हैं, खेल में पढ़ते हैं, तुम इतना पढ़ लो मैं इतना पढ़ती हूँ, ये कर लो वो कर लो। आज आप देखिए हमारे इस किताब से दूर रहने की वजह क्या है? दुनिया। आज इस किताब से दूर रहना हमारी मसरूफियत क्या है? रोजमर्रा की दिलचस्पियां। कैसे पता चले कि मैं गफलत में हूं कि नहीं? अपनी रूटीन देख ली, रोज क्या करती हूँ जिसको अल्लाह लाहिया कह रहे हैं और खेल रहे हैं ये लगून जी के, हमारे काम हमारी जॉब्स हमारे बच्चे हमारे ये खेल ही तो है। आप देखिए कि दुनिया की डिग्री को पाने वाला तो सब कुछ छोड़ के जाता है, तो क्या दीन की डिग्री को पाने के लिए हम थोड़ा भी नहीं छोड़ते? जिस चीज की इंसान अहमियत समझता है ना उसके लिए फिर वो दौलत वक्त माल से सब कुछ लगाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारी गैर संजीदगी खत्म कर दे। आज उम्मत मुस्लिमों की बहुत बड़ी वजह जिसने उनको नॉन सीरियस कर दिया वो इसी आयत को अपने सामने नहीं रखना। आज अपनी जात को बड़ा करने के लिए हम काम करते हैं, क्वालिटी अपने नाम पे दिखाते हैं, हम सजदा नहीं होते क्योंकि हमें अपने मौत के करीब होने का फिक्र नहीं। आज हम बेरू हो गए, हमारी नमाजें बेरू हैं, हमारे रोजे तक बेरू हो गए। अल्लाह ताला कहते हैं देखो, और कुछ सुने भी तो कहते चलो देखते हैं, बोले कुरान क्या कहता है, हमने कौन सा मानना है, दिस एंड दैट। नुकसान क्या है कि छोटी सी चीज करीब होती है तो बड़ी चीज पीछे छुपती है। अल्लाह ताला वैसे ही लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को सुनकर नॉन सीरियस लेते थे उनकी कुछ छुपी हुई बातों को कुरान में लाते हैं। वसरुन नजवल्लसीन जलमू, और जालिम आपस में सरशियां करते रहते हैं। क्या कहते हैं? ये शख्स आखिर तुम जैसा ही तो एक बशर है, फिर क्या तुम आंखों देखे जादू के फंदे में फंस जाओगे? रसूल ने कहा, मेरा रब हर उस बात को जानता है जो जमीन और आसमान में की जाए, वो समी और अलीम है। वो कहते हैं ये परागंदा ख्वाब है के, बल्कि ये तो इसकी मन घड़त है, बल्कि ये शख्स शायर है, वरना ये लाए कोई निशानी जिस तरह पुराने जमाने के लोग निशानियों के साथ भेजे गए। हालांकि इनसे पहले कोई भी बस्ती जिसे हमने हलाक किया ईमान न लाई, अब क्या ये ईमान लाएंगे? देखिए इनकी बौखलाहटें दिख रही हैं कि अल्लाह के नबी के बारे में जो नेगेटिविटी मुआशरे में फैलाई हुई थी ना, जितने मुंह उतनी बात। कोई कहता ये शायर है, कोई कहता मजनू है। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी को इतने मुख्तलिफ टाइटल क्यों दिए? क्योंकि अल्लाह के नबी उनको उनकी गफलत वाली जिंदगी से निकल कर एक शऊर वाली और एक मकसद वाली जिंदगी की तरफ दावत दे रहे थे, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं हमें खुश रहने दो। आप इसको ऐसे सोचिए कि आपका बच्चा सो रहा है या आपके मियाँ सब सो रहे हैं और उनका सोने का मूड है, आप जाके उनको हिलाएंगी ना उनको गुस्सा आएगा, लाइट जलाएंगी उनको गुस्सा आएगा, आप शोर करेंगी वो गुस्से में आएंगे, वो कहेंगे मुझे सोने दो। सेम यही चीज आप भी करेंगी, अगर आप सो रही हैं तो दूसरा उठाए। तो लोगों को सोना अच्छा लगता है। आप उन्हें कहते उठो उम्मत बन के जियो, वो कहते क्या मुसीबत है, अब ये उम्मत उम्मत बस नमाजें पढ़ी, इतनी महंगी इफ्तारी कराई लोगों की, अभी उम्रे का टिकट बुक कराए, अब ये उम्मत उम्मत की बातें लगा दी इन्होंने, हमें सोने दो। तो अल्लाह ताला कहता है कि फिर वो अपनी हिफत मिटाने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए नबी पर बातें करते हैं और आज के दौर में ये दिन पे बातें करते हैं। तो अल्लाह अपने नबी को भी तसल्ली देते हैं और हर एक को उसको देते हैं जिसको दीन की वजह से लोगों ने बातें की। तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही किया करते थे। तुम अगर इल्म नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो। इन रसूलों को हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया ताकि वो खाते ना हो और ना सदा जीने वाले थे। यदि वो चाहते थे कि अल्लाह के नबी बिल्कुल एक कोने में बैठे हुए ऐसे बेजरर किस्म के लोग हों जो बैठ के तस्बीहों पढ़ते रहें और वजीफे करते रहें और ना खाएं ना पिएं, जब अल्लाह के नबी को महफिलों में देखते, खाता पीता देखते, हंसता बोलता दिखते, कहते ये कैसा दीन है, तो अल्लाह करे बताओ कौन सा इंसान आज तक दुनिया में गुजरा जिसने खाया ना पिया ना हो। तो ये नबी तुम्हें खाने पीने से तो खुद भी नहीं रोकता, तुम क्यों सोचते हो कि इसको इस जिंदगी की सारी सरगर्मियों से दूर करके हम अपनी मौजें और मस्तियां कर ले? फरमा फिर देख लो, आखिरकार हमने इनके साथ अपने वादे पूरे किए और उन्हें जिस जिसको हमने चाहा बचा लिया और हद से गुजरने वालों को हलाक कर दिया। लकद अनज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून। हाईलाइट, लोगो हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेज दी जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम समझते नहीं हो? इतनी खूबसूरत आयत है। इंसान का नाम किसी चीज में छप जाए इंसान को वो बहुत अच्छी लगती है। अखबार में आपकी खबर छप जाए आप उस पर खुश होते हैं, लोगों को दिखाते हैं, कहीं आपकी सदर के साथ तस्वीर छप जाए आप बहाने बहाने लोगों से कहते अखबार पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी, नहीं आज अखबार पढ़ी नहीं, अखबार देखी थी, भी देखी थी, क्या हो गया? वो मैं थी उसमें, तुम्हें मैं तो तुम्हें अभी भी देख रही हूँ, मेरे सामने जीती जागती, तो मेरी उस तस्वीर से क्या हो गया? लेकिन इंसान को वो चीज अच्छी लगती है जिसमें उसका जिक्र है। ये कुरान, इसका टॉपिक इंसान है। हमने अल इंसान के नाम पे एक पूरा दौरे कुरान किया था, यही आयत कोट की थी उसमें भी। हकीकत है कि हर किताब का एक टॉपिक होता है ना, इस कुरान का टॉपिक इंसान है, अल इंसान, जो कुछ हो। और ये किताब वक्त के साथ बड़ी होती है। बच्चों के लिए ये स्टोरी बुक है, जवानों के लिए ये बुक थॉट प्रवोकिंग है, और वक्त के साथ आप देखिए ये किताब बड़ी होती है। आप खुद देखिए, जो लोग कहते हैं हम कितने साल से दौरे कुरान कर रहे हैं, आज से 15 साल पहले अगर ये सिलसिला आपकी जिंदगी में शुरू हुआ तब भी यही कुरान था, आज भी यही है। क्या ये कुरान आपके साथ बड़ा हुआ? बिल्कुल हुआ। आज से 15 साल पहले हो सकता है आप बिल्कुल अर्ली टीन थे, यंग थे, जवान थे, वो तो आपको कैसा लगा? अब वक्त के साथ आपको मिसालें और एग्जाम्पल्स और जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो दिखते हैं। तो ये किताब जिसको दे देंगे उसको समझ आएगी। आजकल देख हॉस्टलों में हमारे पास दौरे कुरान हो रहा है, मिनी दौरे कुरान। तो मैंने उनसे पूछा, ये इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स, पहली दफा शहर में लोगों को ये खबर मिली कि बच्चों का दौरे कुरान हो रहा है, तो वो उसका नाम ही मिनी दौरे कुरान है। तो मैंने उनसे पूछा आप लोग क्या कर रहे हो उसमें, मिनी दौरे कुरान, पूरा कुरान बच्चों को पढ़ाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने सूरते पे की पूरी सूरतों के नाम याद कराए और काफी अच्छे आइडियाज मुझे उनमें से मिले। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम अपने बच्चों को बचपन से इस कुरान से जोड़ देते हैं तो बड़े होने तक उनको ये समझ आ चुका होता है। तो इस किताब को पढ़ने से पहले ये किताब हमें पढ़ लेती है। एक रिवर्ट थे, उनका कॉल है कि इससे पहले कि मैं इस किताब को पढूं ये किताब मुझ पढ़ लेती है। और हकीकत है कि ये किताब इंसान के साथ जज्बाती ताल्लुक रखती है। ये किताब समझ तब आएगी जब आपकी इसके साथ एफिलिएशन होगी, इमोशंस होंगे। प्यार से थामे इस किताब को, आप अपने सेलफोन से ज्यादा प्यार से थामे। इसका पेज पलटें तो आपको लगे जैसे आपकी मनपसंद चीज है वो खराब ना हो, تو اس کتاب کو نہ پڑھ کے زندگی گزارنے والے، اس کا حل یہ کہ بغیر مینول کھولے اپنے مشین یوز کی اور شروع میں آتے ہی اس کو 220 کے بجائے 420 پہ لگایا اور ایک دھماکہ ور بسٹ ہو گئی. آج انسانیت بسٹ ہے. کیوں؟ کہ وہ کتاب کے بغیر جی رہے ہیں. غیر مسلم تو جیئیں گے، مسلمز کا بھی حال آج کچھ ایسے کہ وہ بند کتاب کی پیروی کر رہے ہیں. آپ لائیے بلینڈر اور اس بک لٹ کو جو اس میں سے نکلا، اس کو چومیں، چاٹیں، اس کو خوبصورت جوس دان میں ڈال دیں، اس کو کچن میں ایک بڑے اچھے فریم میں لگا دیں، کیا فائدہ ہوگا؟ کھول کے پڑھیں گے تو بتائے گی کہ کیسے یوز کرنا ہے، تو ہاؤ ٹو ہینڈل یا ہاؤ ٹو یوز. بلکہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ریڈ می بیفور یوز، اکثر چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے، یہ قرآن بھی کہتی ہے. عملی زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کو پڑھ لو، پھر دیکھنا تمہیں اپنے ہر روپ اور رشتے میں اس کتاب کے مطابق عمل کرنا کتنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آسان کر دے. اور یہ کتاب ذہن میں آنے والے ہر سوال کا جواب دے رہی ہے. اس کو جب اپنا سمجھیں گے تو اس سے پیار آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تمہارے مسائل کا حل ہے. اس میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت کچھ رکھا ہے.